आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने इस्तेमाल करने वालों के लिए आसान ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया पोर्टल का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया ओसीआई पोर्टल शहरियों के लिए साजगार डिजिटल हुक्मरानी को फरोग देने में अहम कदम है। एनसीपी के सीनियर रहनुमा छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र काबीना में शामिल किया जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले दो रोज के दौरान कर्नाटक में शदीद बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जंगबंदी और जंग के मुमकिन खात्मे के लिए फौरी और राष्ट्र मुजाकिरात शुरू करेंगे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव के घोगला बीच पर एक रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की खेलों की तारीख में इसे तारीख साज लम्हा करार दिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओआईसी पोर्टल का आगाज किया। मजकूरा नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से ज्यादा ओसीआई कार्ड रखने वालों और नए सारिफ को बेहतर तौर पर काम करने की सहूलत, जदीद सिक्योरिटी और सारिफ दोस्त तजुर्बा फराहम करेगा। इस मौके पर वजीर दाखला ने कहा कि भारत ओसीआई कार्ड रखने वालों को आलमी दर्जे की इमिग्रेशन सहूलतें फराहम करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन यूज़र इंटरफेस के साथ नया ओसीआई पोर्टल बैरून मुल्क आबाद शहरियों के रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। जनाब शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत से भारतीय शहरी रहते हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जब वो भारत का दौरा कर रहे हैं या यहाँ क़याम कर रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। दाखिली उमूर की वजारत के मुताबिक ओसीआई खिदमात पोर्टल 2013 में तैयार किया गया था और फिलहाल ये बैरून मुल्क 180 से ज़्यादा मिशनों और साथ ही साथ 12 फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस FRROs में काम कर रहा है और इसमें तकरीबन रोज़ाना 2000 से ज़्यादा दरख्वास्तों पर काम किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए ओसीआई पोर्टल को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इजाफी खसूसियात और बेहतर कामकाज के साथ नया पोर्टल शहरियों के लिए साजगार डिजिटल हुक्मरानी को फ़रोग देने में अहम कदम है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सीनियर रहनुमा छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र काबीना में शामिल किया जाएगा। गवर्नर CP राधाकृष्णन मुंबई के राजभवन में सुबह 10 बजे उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आज मुदाकार OBC रहनुमा और एक निहायत तजर्बेकार सियासतदान NCP लीडर छगन भुजबल आज एक काबिनी वजीर की हैसियत से हलफ लेंगे। जनाब भुजबल को खुराक, शहरी फराहमी और सारिफीन के तहफ्फुज से मुताल्लिक महकमा दिया जा सकता है। ये महकमा पहले भी उनके पास था। हलफ बर्दारी की ये तकरीब कानून साज असम्बली के मानसून इजलास से कबल हो रही है। NCP की जानिब से वजारत के लिए कोई दस्तियाब नहीं था। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत और दहशतगर्दी के खिलाफ खतई बर्दाश्त न करने में ताउन के लिए नीदरलैंड्स की सताइश की है। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान उस वक्त सामने आया जब उन्होंने कल हेग में नीदरलैंड के अपने हमनसब कैस्पर वेल्थकैंप से बातचीत की। वजीर खारजा नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी के 6 रोजा दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी बाहमी शराकतदारी और मसरूफियात को गहरा करने पर वसी तर तबादला ख्याल किया और कसीर कुतबी दौर में आलमी सूरतहाल पर बातचीत की। वजीर खारजा के साथ साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक माहरीन से भी मुलाकात की और बातचीत में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान गहरी शराकतदारी पर तवज्जो मरकूज की गई। इससे कबल नीदरलैंड्स के लिए भारतीय सफीर कुमार तुहीन और वजारत खारजा में डायरेक्टर गैब्रिएला सेंसी ने डॉक्टर जयशंकर का खैर मकदम किया। इसराइल में भारत के सफीर JP सिंह ने कहा है कि यही सही वक्त है जब इस्लामाबाद को चाहिए कि वो पाकिस्तान में मुकीम आलमी दहशतगर्दी की इस्लामी तंजीमों, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के सरगनाओं को भारत के हवाले करे। इसराइल के TV चैनल के साथ इंटरव्यू में जनाब सिंह ने कहा कि यह पाकिस्तानी गिरोह 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घिनौने हमले समेत भारत में कई दहशतगर्दाना हमलों में शामिल रहे हैं।
The two main groups which are involved in cross-border terrorism from Pakistan are Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. And they have been creating problem over the past 2-3 decades to us. The ceasefire is still holding on, but we have made it very clear that this Operation Sindoor, it's paused. It's not yet over. So our fight against terrorism will continue. We have set a new normal. And the new normal is that we will follow an offensive strategy. Wherever terrorists are, we have to kill those terrorists and we have to destroy their terrorist infrastructure.
जनाब सिंह ने मजीद कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत की दिफाई अफवाज की जानिब से 7 मई को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे आरजी तौर पर रोका गया है। जनाब सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के मौके पर कौम भारतीय फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। आकाशवाणी न्यूज दिफाई अफवाज को खराज तहसीन के तौर पर खसूसी नशरिया पेश कर रहा है। आज हम इसके तहत परमवीर चक्र याफ्ता नायब सूबेदार बाना सिंह की बहादुरी को याद करेंगे।
जम्मू के रहने वाले नायब सूबेदार बाना सिंह ने जनवरी 1969 में 8वें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शमूलियत इख्तियार की। जून 1987 में उनके डिवीजन को सियाचिन में तैनात किया गया। इस दौरान ये देखा गया कि इलाके में पाकिस्तानी दरअंदाज बड़ी तादाद में घुस आए हैं। इलाके को दरअंदाजों से खाली कराना जरूरी था और इस काम के लिए खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई। नायब सूबेदार बाना सिंह ने खुद को इस फोर्स के लिए रजाकाना तौर पर पेश किया। पाकिस्तानी दरअंदाजी 6,500 मीटर की बुलंदी पर हुई थी। नायब सूबेदार बाना सिंह ने इंतहाई मुश्किल और दुशवार गुजार रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी और शुजात के साथ टास्क फोर्स की क्यादत की। इस दौरान दस्ती बमों का इस्तेमाल करते हुए नायब सूबेदार बाना सिंह ने हर खंदक को दरअंदाजों से आजाद किया। उन्होंने अपनी टीम को अपनी बहादुरी और क्यादत से मुतासर किया। इस बेमिसाल क़यादत और मुनफरिद बहादुरी के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। कौम उनकी शुजात को सलाम पेश करती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 122वां नशरिया होगा। अवाम टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजावीज भेज सकते हैं। लोग नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन तजावीज रवाना कर सकते हैं। आइंदा नशरी के लिए तजावीज इस माह की 23 तारीख तक कबूल की जाएंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की वार्निंग के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने कर्नाटक और तमिलनाडु, कोंकण और महाराष्ट्र से मुत्तसिल इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अगले 3 रोज के दौरान इन इलाकों में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। मीडिया से बात करते हुए महकमे मौसमियात में सीनियर साइंसदान RK जैनमणि ने कहा कि मुंबई में भी कल से औसत से शदीद बारिश हो सकती है।
Today we have updated the orange color warning for Karnataka, particularly for 20 and 21. So we have updated to red color, be it in north interior Karnataka, south interior Karnataka and coastal Karnataka. So we have given red color warning for extremely heavy rainfall for mainly coastal Karnataka and interior Karnataka. And adjoining area like Ghat area of Tamil Nadu, North Tamil Nadu, Rayalaseema, we have given very heavy rainfall. Also, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra likely to get very heavy to extremely heavy on 29th or 21 to 22nd. So Bombay will also receive moderate to heavy rainfall from 21st.
इस दौरान शदीद बारिश, गरज चमक और बिजली से झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में 6 अफराद हलाक हो गए। गढ़वाल जिले के मीराल गांव से 3 अमवात, रामगढ़ से जिले से 2 अमवात और हजारीबाग जिले से 1 शख्स की मौत की खबर है। मौसमियात के महकमे ने कल से अगले 2 रोज तक मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशेंगोई की है। बेंगलुरु शहर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें शहर की इंतजामिया 24 घंटे काम कर रही है ताकि सड़कों और घरों में भरे पानी को बाहर निकाला जा सके। रात में 25 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला DK शिवकुमार कल शाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। तफसील हमारे नामानिगार से।
मूसलाधार बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर मुसलसल मुतासर है, क्योंकि शहर के निचले इलाके पानी نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں اور ٹرکوں سے نکالا جا رہا ہے. لمبے ٹریفک جام کو دیکھتے ہوئے کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دی ہے. بنگلورو سے سدھندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی.
اتراکھنڈ میں جاری چار دھام یاترا میں بڑی تعداد میں عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. 30 اپریل کو پوتر یاترا شروع ہونے کے بعد سے 10 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے محض 20 دن کے اندر بدری ناتھ، کیدار ناتھ، گنگوتری اور یمنوتری مقامات کا دورہ کیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4 لاکھ عقیدت مندوں نے کیدار ناتھ کا، 2 لاکھ عقیدت مندوں نے بدری ناتھ کا، جبکہ 3,65,000 سے زیادہ عقیدت مندوں نے گنگوتری اور یمنوتری دونوں مقامات کے درشن کیے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ بندی اور جنگ ختم کرنے کے ممکنہ امکان تک پہنچنے کے لیے سیدھے بات چیت شروع کریں گے. روسی صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ 2 گھنٹہ طویل ٹیلی فون بات چیت کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے. جناب ٹرمپ نے اس بات چیت کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ دونوں فریق مذاکرات کے لیے تیار ہیں.
My little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin. Actually, we had a good talk, and I think that progress is being made. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average, and we're trying to stop it. It's a bloodbath. Satellite pictures that are so bad in this day and age. We're living a horrible thing that's going on, and we're doing the best we can.
دوسری جانب پوتین نے تصدیق کی ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ ممکنہ امن سمجھوتے پر کام کرنے کے لیے تیار ہے. روس نے کہا کہ مذاکرات صحیح سمت میں جاری ہیں. روسی صدر نے جاری تنازع کے دوران امن کے لیے سب سے مؤثر راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وہیں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ ترکیہ، سوئٹزرلینڈ یا ویٹیکن میں بات چیت کے لیے تیار ہے. زیلنسکی نے مکمل اور غیر مشروط جنگ بندی کی بات کہی اور زور دیا کہ یوکرین بامعنی فیصلے لینے کے لیے تیار ہے. حج 2025 کے لیے عازمین حج ملک بھر کے 18 امبارکیشن پوائنٹس سے روانہ ہو رہے ہیں. 1,20,000 سے زیادہ عازمین حج کو ایک مہینے کی مدت میں حج پر روانہ کرنے کے لیے 2 مرحلوں میں روانگی کا عمل انجام دیا جا رہا ہے. اقلیتوں کی وزارت نے بتایا کہ مقررہ امبارکیشن پوائنٹس سے گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ کو شروع ہوا روانگی کا پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. ان امبارکیشن پوائنٹس میں احمد آباد، بنگلور، بھوپال، دلی، گیا، گواہاٹی، حیدرآباد، اندور، جے پور، لکھنؤ، ممبئی اور سری نگر شامل ہیں. اس دوران 10 مئی کو شروع ہوا دوسرا مرحلہ جاری ہے. وزارت نے بتایا کہ عازمین کی آسان روانگی کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں، جن میں لاجسٹک مدد، طبی سہولتیں اور ہوائی اڈا اتھارٹیز کے ساتھ تال میل شامل ہے. گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جیم رسائی اور کفایت کے معاملے میں نئی بنیاد قائم کرتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر عوامی ای خریداری پلیٹفارم بن کر ابھرا ہے. جیم کے چیف ایگزیکٹو افسر مہر کمار نے کل نئی دلی میں جیم کی شروعات کے 8 سال مکمل ہونے پر منعقدہ اخباری کانفرنس میں یہ بات کہی. کھیلو انڈیا بیچ گیمز KIBG کے افتتاحی ایڈیشن کا کل شام دیو کے گھوگلا بیچ پر آغاز ہوا. کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے رنگا رنگ تقریب میں ان کھیلوں کی باضابطہ شروعات کا اعلان کیا. افتتاحی تقریب میں روایتی رقص کے ذریعے بھارت کی گوناگونیت کو پیش کیا گیا. جناب مانڈویا نے سال 2047 تک بھارت کو اسپورٹس سپر پاور بنانے کے عزم کو دہرایا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان.
شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ سمیت کئی اخباروں نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کے آپریشن سندور سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کو دی گئی بریفنگ کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے میں تیسرے فریق کی شمولیت نہیں. روزنامہ ملاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے احمد آباد کے ایک پروگرام میں دیے گئے اس بیان کو پہلے صفحے پر شائع کیا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں کوآپریٹو ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی ضرورت.
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے استعمال کرنے والوں کے لیے آسان اوورسیز سٹیزن آف انڈیا پورٹل کا آغاز کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیا OCI پورٹل شہریوں کے لیے سازگار ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے میں اہم قدم ہے. NCP کے سینئر رہنما چھگن بھوجبل کو آج مہاراشٹر کابینہ میں شامل کیا جائے گا. بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران کرناٹک میں شدید بارش کے تعلق سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ مندی اور جنگ کے ممکنہ خاتمے کے لیے फौरी और रास मुजाकिरात शुरू करेंगे और खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव के घोघला बीच पर एक रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की खेलों की तारीख में इसे तारीख साज लम्हा करार दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।